नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं।
कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य कृषि उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
MSP में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है।
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समुद्री विकास में स्थिरता आवश्यक है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत के निर्णय राष्ट्रहितों के अनुरूप होते हैं और किसी एक गुट के साथ जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत संवाद और कूटनीति पर निरंतर जोर देता आया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने कहा है कि अमेरिका अपने मित्र देशों और साझेदारों से परामर्श के बिना कई काम कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के लेखक सत्र में श्री स्टूब ने कहा कि अमेरिका ग्लोबल वेस्ट से अलग थलग हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए ग्लोबल नॉर्थ वैचारिक रूप से नया ग्लोबल वेस्ट बन रहा है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि रायसीना डायलॉग में ये पहली बार है कि मुख्य अतिथि ने लेखक सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान संघर्ष पश्चिम और पूर्व के द्वंद्व से परिभाषित हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोगैस सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने ये बात पुणे के यशवंत राव चौहान विकास प्रशासन अकादमी में आयोजित कंप्रेस बायोगैस सम्मेलन 2026 के उद्घाटन के अवसर पर कही। प्रवर्तन निदेशालय उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार आज मुंबई और हैदराबाद में 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। लगभग 15 टीम तलाश अभियान चला रही हैं। ये छापेमारी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों के परिसरों पर की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार सदामासा ओ से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर दोनों के बीच सार्थक विचार विमर्श हुआ। नेपाल में आम चुनाव के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML 3-3 सीटों पर आगे है। मतगणना आज रात तक पूरी हो जाने की संभावना है। इसराइल ने आज लेबनान में हिजबुल्ला के बेरूत स्थित मुख्यालय और सैन्य साजो सामान से लैस 10 ऊंची इमारतों पर हमला किया। इसराइल ने बताया कि हमलों में कार्यकारी परिषद के मुख्यालय और ड्रोन के गोदाम को निशाना बनाया गया। इनका इस्तेमाल ईरान समर्थित हिजबुल्ला इसराइल पर हमले करने के लिए करता है। दिल्ली हवाई अड्डे ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार पश्चिम की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हो सकती है अथवा उनके समय में बदलाव भी हो सकता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 79,398 पर, जबकि निफ्टी 169 अंक की गिरावट के साथ 24,597 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।